نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا بات کرنے سننے کا موقع دیا ہمیشہ کی طرح آج کے لیکچر کی لوکیشن آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں اس کو لوکیٹ کرنا ہو تو آسان ہو اور اپنے اس ٹرپ میں جو چیز میں ایوری ڈے دیکھ رہی ہوں ایک سے زائد بار وہ لوکیشن شیئر کر دو کسی کو اگر آپ ایڈریس بھی بھیج دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں لوکیشن شیئر کر دو وجہ بس کلک کریں گے تو گاڑی چل پڑے گی اس طرف کی ہمارے حافظوں کو کمزور کرنے کا یہ ایک اور طریقہ ہے پہلے لوگوں کو فون نمبرز یاد ہوتے تھے اپنے قریبی جن کو آپ ملتے جلتے ہیں اب میرا گمان ہے میں آپ سے بھی پوچھ کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی کس کو 10 فون نمبرز یاد ہیں 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور مزید شرمندگی سے بچاتے ہوئے پوچھو اپنا اپنا نمبر کس کو یاد ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مس کال دیں گے اس پہ آ جائے گا اپنے شوہر کا کس کس کو یاد ہے گھر والوں کا یعنی عموماً بس ایک نمبر یاد ہوتا ہے جو کسی بھی مشکل میں پھنسنے کے موقع پہ ہم یوز کر سکیں یہ سب کچھ ہمارے دماغوں کی ان چھپی ہوئی خدا داد صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے جو اللہ نے ہمارے برین میں رکھی ہیں آج سے کئی سال پہلے کسی ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنے برین کا صرف 5% حصہ یوز کر کے جاتا ہے 95% اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے مجھے لگتا ہے اگلے 8-10 سال بعد یہ فگر اور بھی پیچھے جائے گا کیونکہ اب ہم برین یوز کرنے کے عادی نہیں رہے اب ہر طرف دل پھینکتے ہیں اور دل سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں تو آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا پی کے ٹرپ 2021-22 کا لیکچر نمبر 21 ہے اس سے پچھلے 20 لیکچرز اگر آپ سننا چاہیں تو آپ نور القرآن ٹی وی یوٹیوب چینل ہے اور نور کے لفظ میں یو ہے میرا خیال ہے اب جو لوگ روز سنتے ہیں ان کو تو یاد ہو چکے ہوں گے جملے این یو آر یو ایل کیو یو آر اے این ٹی اور وی اس پہ آپ کو پلے لسٹ میں جا کر اسی نام کی لسٹ میں مل جائیں گے آپ میں کچھ ساتھی آج فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے کوئی کسی کے کہنے پہ آئے ہوں گے تو ہر لیکچر مختلف ہوتا ہے اور کوئی لیکچر ریپیٹ نہیں ہوتا ایک سیریز میں تو پچھلے 20 لیکچرز الحمدللہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملیں گے فیس بک پہ بھی ملیں گے مائی نور القرآن کا چینل ہے فیس بک کا آپ دونوں کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ جیسے کل کا لیکچر آئے یا پرسوں کا آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور اس سیریز کا نام زہر الفساد فی البر والبحر ہے یہ نام کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دوں ہر سیریز کا ایک تھیم چوز کیا جاتا ہے جیسے اس سے پیچھے ہماری جو ایک طویل سیریز پوری ہوئی وہ یو ایس اے یو کے پیرس اور اسی کے اندر پھر یورپ کے 2-3 اور ملک بھی تھے جیسے سوئٹزرلینڈ بھی تھا آئرلینڈ بھی تھا وہ پوری سیریز تقریباً 3 ماہ میں پوری ہوئی اس کا ٹاپک کیا تھا لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا کیونکہ کرنٹ حالات کے تحت ضرورت تھی کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں الحمدللہ یہ سیریز جو پاکستان کی ہے یہاں کے حالات ہمارے لائف سٹائل اور ہمارے ارد گرد کی جو بےچینیاں ہیں اس کو دیکھ کر جو تھیم چوز ہوا وہ کیا تھا کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا زہر الفساد فی البر والبحر اور فساد کا لفظ صرف گولیاں چلنا ہنگامے اس کا نام نہیں ہے کیونکہ اخباروں کی خبریں ہمیں پتہ ہے اگر پاکستان انڈیا کو جوڑ لیں تو مسلم اور ہندو فسادات اور کراچی کے حالات کو دیکھیں تو فسادات ہڑتالیں ہم سب اسی سے سمجھتے رہے مجھے خود بھی نہیں پتا تھا قرآن پڑھنے سے پہلے کہ فساد سے مراد کیا ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے کیونکہ اصل میں فساد پھیلتا ہی تب ہے جب مالک کی قدر نہیں رہتی اور الحمدللہ آج اپنے یہاں آنے سے پہلے کے سیشن آیت بایت جو ہمارا ناروے کی لائیو کلاس میں ہوتا ہے اس میں جو آیت پڑھائی ہے اس میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کی جو بات ہے وہ آئی. کیا پتہ چلا کہ بندوں کا جب اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو فساد پھیل جاتا ہے. شرک فساد ہے، کفر فساد ہے، نبی کی سنتوں کو نہ ماننا فساد ہے، اسی طرح پھر انسانوں کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ یہ فساد ہے. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ امت مسلمہ کا مشترکہ نظام تعلیم. بڑا مشکل نام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ہم جس نظام تعلیم سے انٹروڈیوسڈ ہیں، ہم 3 سال کی عمر کے ایک بچے کو کسی ڈے کیئر، آپ کے ہمارے ملک میں ڈے کیئر کہتے ہیں، نرسری کہتے ہیں، شاید مونٹیسری کہتے ہیں، ناروے میں آپ سن رہے ہیں تو ناروے والے اس کو بارنے ہاگن کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر ملک میں کم و بیش کچھ نہ کچھ نام بدل کے ہم 3 سال کے بچے کو ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے سسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں اور پر تول رہے ہوتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں جسے داخلہ مل جائے. 3-3، 4-4 ہزار کرون کی فیس دے کر ہم اپنے 2.5 سے 3 سال کے بچے کو بارنے ہاگے بھیجتے ہیں جہاں صرف اس کو کھلاتے ہیں. اور میں اور کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بچہ اپنے 3 سال کا کسی کو گود دے دیا، اب جو نئی ماں ہے اس بچے کو دن رات اپنی مرضی سے پیمپر کرے گی. آپ کے اس بچے کو وہ چاہے پہلے شروع میں رائم سکھائیں، شروع میں وہ ان کو نشید سنائیں، پلے گراؤنڈ میں لے جائیں، پھر آہستہ آہستہ وہ 2+2، ABC، 1-2-3-4 کرتے کرتے ہمٹی ڈمٹی، سچن وال اور اسی طرح جیک اینڈ جل سکھاتے ہوئے 10 سال کہہ لیجئے پڑھانے کے بعد میٹرک کی ڈگری دے دیں گے. ایسے ہی ہے نا، اور میٹرک 10 میں نہیں بلکہ 12 سال میں ہوتا ہے، کیونکہ کچی کے ساتھ ایک پکی، پھر 1-2-3-4. اب 12 سال آپ نے ایک بچے کو ایک معاشرے کے حوالے کر دیا. امیر بھی کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں. کوئی فری سکولوں میں بھیجیں گے وہ گورنمنٹ کے ہوں گے، تو کوئی پرائیویٹ سکولوں میں بھیجیں گے جس میں بھاری فیسیں بھی ہوں گی. اب 12 سال کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی میٹرک کرتا ہے. سر آپ میرے ساتھ چلیے ذہنی طور پہ، اس وقت تک بچے کی عمر عموماً 14 سے 15 ہو چکی ہوگی. 15 سال کا بچہ میٹرک کر لیتا ہے، یس کے دو ٹھیک ہے. اب لکھیے اپنے پاس، 3 سال کی عمر میں سفر شروع ہوا، 15 سال کی عمر میں اس بچے یا ینگ لڑکے لڑکی نے میٹرک کیا، چھوڑ دے اگر تو میٹرک کی کوئی حیثیت ہے؟ آج میٹرک پاس کا تانا نہیں دیتے لوگ، کہیں کلرک بھی شاید نہ رکھیں یا رکھ لیں، مزدوری کر لے، کوئی چھوٹی سی چھاپڑی لگا لے، میٹرک. آپ کہتے ہیں مزید پڑھاتے ہیں، آپ اس کو میٹرک کے لیے سکول سے کالج لے جاتے ہیں. اب جب سکول سے بچہ کالج میں گیا، بچہ تو نہیں آپ کہیں اس وقت، وہ ایک ینگ ارلی ٹین ایجر بن گیا یا ٹین ایج کی، اس کی وہ ساری ایج کی ساری سوچیں بھی سامنے رکھیے، تو وہ بچہ ویدرگون پہنچ گیا، یعنی کالج پہنچ گیا. پاکستان میں چکے ہیں تو یہاں کی بات کرتے ہیں، تو آپ پھر 2 سال اس کو مزید پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، جس میں یا تو وہ ایف اے کرے گا یا وہ ایف ایس سی کرے گا. ایف اے کرے گا تو جو مرضی سبجیکٹ لے لے، ایف ایس سی کرے گا تو پھر اس کے آگے 2 پھر سیکٹ بنتے ہیں، فرقے 2 ہیں، یا پری سائنس، پری میڈیکل، یا پھر وہ انجینئرنگ لے لے. ایف ایس سی کرنے والا کیا اس کی کوئی پوسٹ، کوئی بات، کوئی اتنی بڑی ریزنیبل سی ہو سکتی ہے؟ نہیں. مطلب مجھے رینک نہیں یہاں پتا کس ایج کے کس رینک کے، لیکن بڑی ہی معمولی سے ذرا سی اوپر، یعنی ڈرائیوروں سے ذرا سی اوپر کی پے اس کو مل جائے گی. اگر مالی بابے کو کچھ ملتا ہے، ڈرائیور کو ملتا ہے، تو یہ اس سے سیکنڈ پہ چلا گیا. آپ کہتے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو اب بی اے کرواؤں گی. بی اے کہہ لیں یا بیچلر کہہ لیجیے، بی اے بی ایڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، 2 سال مزید پڑھا. پہلے 15 کا تھا، پھر 16-17 کا ہوا، اب 17 سے 18، 18 سے 19. 19 سال کی عمر میں ایک بچہ اور بچی یا تو بی اے کر کے نکلتا ہے یا بی ایس سی کر کے نکلتا ہے. چلیے اب کیا ہے، ختم پڑھائی در. وہ تنخواہ جو پچھلے ایف اے کے بعد ملنے تھی، اس میں 5,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. اور یہ ایک اور ڈرا بیک ہے کہ ہماری پڑھائی جو ہے نا، اس پڑھائی کی کامیابی اور ناکامی کس نام سے ہے کہ اس کے بعد کماتے کتنے ہیں. یعنی آج ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیریئر بنانا، جاب مل جائے، پڑھائی، यानी अगर कोई पढ़ने के बाद उससे पैसे कमाने लग जाए तो कहते हैं कामयाब है कि नहीं, और अगर कोई ना करे तो कहते इतने साल से पढ़ा और पढ़ाया लेकिन फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। वो जो ज़हनी बालीदगी थी, जो किरदार साजी थी, जो करेक्टर बिल्डिंग थी, जो उसको मुआशरे का एक महज़ब शहरी बनाना था, वो आज हमारी डिक्शनरियों में कम दिखता है। हालांकि हर पढ़ाई अपने अंदर कोई ना कोई खूबियाँ रखती है, जब बंदा पढ़ता लिखता है तो उसकी सोच ज़रूर खुलती है, और उसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ की निस्बत ज़्यादा हसास होता है। अब आप देखिए कि जब ये सारा कुछ हो गया और एक शख्स पढ़ने लिखने के बाद बाहर आ गया, अब क्या होता है? बीए के बाद फिर एमए, मास्टर्स। बात को अगर मैं इधर ही ज़रा सा वाइंड अप कर दूँ, मास्टर कर लीजिए या एमएससी कर लें तो 2 साल और में आप फारिग हो जाएंगे और किसी कॉलेज में एक अच्छे प्रोफेसर बन जाएंगे, आपको कहीं लेक्चरशिप मिल जाएगी। लेकिन ये भी एक जॉब ही है, तनख्वाह में डबल का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं हमें कुछ प्रोफेशन लेना है, तो एफएससी के बाद आप कैसे चॉइस थी, आप प्री मेडिकल में गए। अब एक नया बाब शुरू हुआ पढ़ाई का, और वो क्या है, तकरीबन 5 साल शायद मेडिकल कॉलेज के, जब कभी हम पढ़ते थे तो उस वक़्त, फिर उसके बाद 3 साल का हाउस जॉब होता था, इंटर्नशिप कहते हैं शायद आजकल उसको, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिसिंग कर करा के एफएससी से लेकर अगले तकरीबन 10 साल तक कोई डॉक्टर डॉक्टरी के काबिल हुआ। अब 2 चॉइसेस हैं, जॉब करें किसी हॉस्पिटल में या अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलें। शुरू में लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम क्लिनिक भी खोलते हैं, और बस फिर कह लीजिए कि डॉक्टर क्या बने, पैसे कमाने की मशीन बन गए। आज भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका भी आता है, डॉक्टर्स की पे स्केल बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टैक्स बेयरर शायद वही हैं। अब मेरा सवाल क्या है, ये सारी कहानी तो आपको भी पता थी, मैंने कोई नई बात नहीं सुनाई आपको। वापस आइए, एज क्या हो जाती है जब तक बंदा डॉक्टर बनता है, वो ही पीछे से शुरू करके 15 साल की उम्र में एफए किया था, 25 साल, 25 ईयर्स एज का बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की, जो अब एक मेच्योर मर्द और औरत बन चुका है, वो मेडिकल प्रोफेशन में गया और उसको प्रैक्टिस भी मिल गई। मेरा सवाल है आपसे, ये प्रोडक्ट जो तैयार हुआ, इसी के पैरेलल साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग कर ली किसी ने तो इंजीनियर बन गया, तीसरी चेन खींच लीजिए तो कोई लॉयर बन गया, और किसी ने एमबीए किया तो किसी कंपनी में बिजनेस रन करने लग गया। क्या ये काफ़ी है? क्या ऐसे लोग जो हमारे ही बच्चे, हमारी ही, हम खुद हैं इसी सोसाइटी का हिस्सा, क्या वो इस शहर के एक कामयाब शहरी बन जाते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में दुनिया की और आखरत की खैर और भलाई शामिल हो के यकीनी हो जाती है? नहीं। अगर यही टॉप मोस्ट कोई डिस्कस कर लूँ, बाकी सब इसके अंडर आ जाएंगे, तो 25 साल की उम्र में सबसे पहली बात है कि माँ बाप ने शादी नहीं करनी उस बच्चे और बच्ची की। क्यों? कि अभी ये पढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी तक शायद उसकी मंगनी हुई ना हो, लेकिन उसने 2-3 लड़कियाँ पसंद करके छोड़ दी होंगी। मुआशरा बाहर दिल फेंक है, कई तरफ ख्याल गया होगा, लेकिन शायद किसी से दोस्ती हो चुकी हो। और उसके बाद अगली बात देखिए, जब शादी नहीं हुई तो घर और बच्चे कहाँ होगा? वेस्ट में पढ़ने वाला बच्चा बच्ची इस वक्त तक, उसकी ज़रा सी सिचुएशन, क्योंकि सारे लेक्चर्स ऑनलाइन बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं और हम कोई उनसे दूर नहीं है। अब 25 साल तक की एज में पहुँचने पर एक यंग लड़का और लड़की सबसे पहले कर्जे का शिकार हो चुके होते हैं स्टडी लोन के नाम पे, फिर इस उम्र तक पहुंचने पहुंचने में वो एक घर का सौदा भी कर चुके होते हैं, क्योंकि अगर लड़का है उसने लड़की को बुलाना है बाहर से तो उसको घर दिखाना है, लड़की ने लड़के को स्पॉन्सर करना है तो घर, और घर का कर्जा लोन, फिर गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है। जब जाहिर है कि आपको इतना कमिटेड लाइफ गुजारनी है तो बसों ट्रेनों पर गुजारा नहीं होता, तो फिर आप क्या कहते हैं कि गाड़ी भी लेते हैं और वो भी लोन पे है, और फिर गाड़ी के बाद घर का लोन, और फिर उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड्स पे डे टू डे शॉपिंग्स। मेरा एक सवाल है आपसे, अल्लाह सुभानहु तआला ने इंसान को क्या कहा? लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। इस दुनिया में हर चीज से खूबसूरत चीज इंसान है। खलकलकुम मा फिल अर्दी जमीया, दुनिया की हर चीज जिसमें पहाड़, दरिया, समंदर से लेकर बेजान चीजें, मादी चीजें, ये सब किसको सर्व कर रही हैं? इंसान को। सूरज किसके लिए रोज उगता है? चांद, मौसमों का बदलना, बारिश, इंसान के लिए। एक इंसान जिसको अल्लाह ने इतने प्यार से पैदा किया, वलकत करम न बनी आदम, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, 25-30 साल की उम्र तक पहुंचकर उसने क्या पाया जो हमने भी डिस्कस किया। चंद सवाल लिखिए, आज आप जाकर अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में ये सवाल पूछिए। आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो अच्छे जवाब मिलेंगे, मैं आपको तसल्ली देती हूँ। बाहर की दुनिया, खासतौर पर वो माँ बाप जो खुद भी इसी लाइफ स्पैम का शिकार थे और एक व्हील के अंदर रोटेशन में लाइफ थी, कि कोल्लू का बेल अगर आप पंजाबी उर्दू में कहते हैं तो कोई ज़िंदगी बाहर की इससे मुख्तलिफ नहीं है। मशीन, टेक्नोलॉजी के बुत, पिछली सीरीज़ का एक लेक्चर है, आप सुनिएगा बाद में कभी। टेक्नोलॉजी के बुत, मटीरियलिज्म, आज हमारे इर्द गिर्द जिस दुनिया में, जिस पहिए के अंदर हम रोलर कोस्टर की तरह चल रहे हैं, वो ये निज़ाम तालीम है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा मैट्रिक करने तक पूरी नमाज भी उसको आ गई, उसको कुरान का कोई एक पूरा चैप्टर ज़ुबानी भी याद हो गया और कुरान का तर्जुमा उसको समझ आता हो। 25 साल का बच्चा, 15 से 25 साल को बीच में रख के देख लीजिए आप, वो बच्चा जो डॉक्टर तो बन गया और अभी सिर्फ बेसिक्स ऑफ इस्लाम में, तौहीद की बात मैं इस वक्त नहीं करती, नमाज ही नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारे यहाँ तौहीद की इतनी फिक्र कोई नहीं लोगों को। हाँ, जब बच्चों के दीन की बात करेंगे ना तो नमाज की बात तो सबको समझ आती है ना। क्या आपका 15 साल का बच्चा 5 वक्त की नमाज वक्त पे पूरे अराकान के साथ पढ़ता? सल्लू कमा राई तुम होनी उसली पे अमल तो तब होगा ना जब हदीस खुलेगी कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। क्या वो बच्चा हर बच्ची इतना पढ़ने के बाद, इतनी किताबें पढ़ी, देखिए मैट्रिक तक 9 बार तो उसने साइंस का इम्तिहान दिया है ना, 9 दफ़ा तो उसने मैथ का इम्तिहान दिया है ना, 9 दफ़ा उसने उर्दू और जो भी सोशल स्टडीज़ हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स है दिए ना, क्योंकि ये सारे फ़र्ज़ होते हैं, मस्ट होते हैं। वो पतली सी इस्लामियात की किताब का भी टेस्ट उसने दिया हुआ है, लेकिन क्या वो बच्चा अल्लाह की निगाहों में और वो जो मतलूब था उसके मुताबिक वो काम कर रहा है जो करने का हुक्म था? आज हमारा फितना, आज का जहर अल फसाद फिल बर वल बहर का बहुत बड़ा नुक्ता क्या है कि हमने वो सबक भुला दिया जो पहली वही का सबक था। मैंने शुरू में आपके सामने सूरत अलग की आयात रखी ना, इकरा पढ़ो। हमारे दीन की पहली ईंट जिसको कहते हैं ना खश्त अव्वल, वो इकरा है, हुक्म है, डूज पढ़ो। और आज उम्मत को देखिए कितना पढ़ने का शौक है। मैं अभी दीन की नहीं बात कर रही, दुनिया की बात कर लें, लाइब्रेरियों को ताले लग रहे हैं। आप विज़िट करते हैं मुख्तलिफ जगहों को, कभी लाइब्रेरी का हाल तो देखें। आपके शहर में, माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है लाहौर, कितनी लाइब्रेरीज हैं, उसमें से कितनी पब्लिक हैं और कितने लोग जो हैं लाइब्रेरीज उसको विज़िट करते हैं? कितने घंटे दिन के आप और आपके बच्चे लाइब्रेरी में गुजारते हैं? चाहे आपने घर में बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह, या आप अपने इलाके की लाइब्रेरी में, या आप किसी बहुत बड़े जैसे इलामा इकबाल ऑडिटोरियम है तो उसकी लाइब्रेरी में, किधर के अलग से करा? अभी तो फकत पढ़ने की बात है, स्टडी, रीड, पढ़ो। आज बीइंग अ नेशन हमें पढ़ने का शौक नहीं रहा। बच्चे भी जो किताबें पढ़ते हैं वो सर पे पढ़ी पे पढ़ते हैं, इम्तिहान होने होते हैं तो ज़रा घरों में डिस्कशंस तो सुना करें, और फिर ये जो दूसरा सिलसिला 2 नंबर उसको तो पीछे कर दे ना, नंबर लगवाना, और ज़रा वो दे दे और वो दे दे, नकलें मरवा कर, सिफारिशें कर कर डिग्रियाँ लेने वाले, और शहर की चेन्स कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए कि हमारे बच्चे टॉपर्स थे, सरगोधा बोर्ड में अव्वल पोजीशन आने वाला। स्कूलों के बाहर पिक्चर्स लगी हुई हैं, हर साल देखती हूँ, इस साल ख़ास तौर पर देखी, जोहराबाद में रस्तों में गलियों गलियों में स्कूल दिखते हैं ना अक्सर, 90% स्कूलों के बाहर जो उनका नेम प्लेट है ना बड़ा सा बोर्ड, उसके साथ तस्वीरें लगी होती हैं कि ये हमारे बच्चे टॉपर्स थे। मान लिए हम किसी ऐसे ही टॉपर्स वाले ग्रुप की बात करते हैं, 6 बच्चे लड़कियों में और 6 लड़कियों में, आपके सरगोधा बोर्ड में टॉप कर गया, कोई मैथ में टॉप कर गया, कोई किसी इसमें कर गया, मेरा सवाल है आपसे, क्या वो बच्चा अल्लाह से डरता, अल्लाह का खौफ है, कई पांच वक्त की नमाज है, अपने माँ बाप का ख्याल रखता है? प्यार करना और बात है, वो तो फितरत में है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, उनके साथ टाइम स्पेंड होता है? अगर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, होता होगा, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी को देखें तो आज माँ बाप अपने बच्चों के रवैयों से खुश नहीं है। आज हम बच्चों को जिस सिस्टम में डाल देते हैं, याद रखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ले लीजिए, वहाँ से शुरू करके हज़रत उमर के दौर में इसका आपको बेहतरीन सिस्टम दिखेगा। असरी और दीनी तालीम साथ साथ थी। इस वक्त आपके मेरे सामने सवाल आता है ना कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें या दूसरे में भेजें। एक दौर ऐसा था कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बच्चा जब किसी तालीमी इदारे में भेजा जाता था तो ला मुहाला ऑन द बोथ साइड उसको असरी तालीम भी दी जाती थी, जिसको आप कह लीजिए इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ABCD, जिसको आप दुनियावी तालीम कहते हैं। हालांकि दुनियावी और दीनी तालीम का तो सवाल ही नहीं है, सब कुछ दीन है। पहली सीढ़ी इकरा बिस्मी रब्बी का की थी, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। क्या था इस आयत में? कुरान पढ़ो, नाजरा पढ़ो, यसरन कुरान पढ़ो। हमारे दिनों में तो कुरान यही आता है। 4 साल के बच्चे को अगर हम मौलवी साहब के पास भेजते हैं या हम अपने बच्चों को किसी दीनी इदारे में डालते हैं तो हमारे दिन में यही नाम आते हैं ना, फिर पहला पारा शुरू करा दो या फिर 30वां पारा करा दो, फिर हम कहते हैं इसको अब नमाज सिखा दो, फिर हम कहते हैं अच्छा आप मौलवी साहब ज़रा इसको आखिरी 10 सूरतें भी याद करा दें क्योंकि इसने जब नमाज में पढ़नी है तो इसको याद होनी चाहिए। हमने 2 मुख्तलिफ खाने रखे, एक तरफ दिन के पूरे हफ्ते को अगर आप काउंट कर लें तो 40 आवर्स बनते हैं अमेरिका में, आम बच्चे पूरे वीक के तकरीबन 170-175 घंटों में से 40 घंटे स्कूल में रहते हैं। पेरिस का निज़ाम और भी उजाला है, 2 दफ़ा जाते हैं बच्चे स्कूल में, बीच में घर आते हैं और वो माएँ वहाँ वाली सारा दिन बच्चों को लाती और छोड़ती हैं। एक दफ़ा लाना छोड़ना बड़ी बात है और कहाँ फिर 4 दफ़ा बच्चों का जाना और आना हो तो और भी टाइम गुजारते हैं, और उनका तरीका है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हर 2 हफ्ते के बाद फिर छुट्टियाँ, फिर बुध को भी छुट्टी, फिर वीकेंड पे भी छुट्टी, यानी 7 दिनों में से बच्चे सिर्फ 4 दिन स्कूल जाते हैं वहाँ। और कुछ इसी किस्म की कहानी है। आपका बच्चा क्वालिटी टाइम स्कूल में देकर आता है, आपकी सारी एफर्ट स्कूल भेजने की है, भारी फीसें स्कूलों की हैं, यूनिफॉर्म स्कूलों में है, किताबें स्कूलों में हैं, आपके हमारे इस मतवसत मुल्क में बच्चा देख रहा होता है कि पेट काट के, यानी जिसको आप कहते हैं पेट पे पत्थर रख लेंगे लेकिन माँ बाप ने पढ़वा दिया, 1000-2000 फीसें भी देते हैं। और पिछला ट्रिप, ये नहीं इससे पिछले से पिछले ट्रिप में कराची के एक स्कूल की फ़ीस जब मुझे पता चली तो मैंने 2-3 बार पूछा, मैं समझी कि मैं सुनने में गलती कर रही हूँ लेकिन वो सच था, 50,000 रुपीज़ एक बच्चे की फ़ीस माँ बाप पे कर रहे हैं। अब जब आप अपने बच्चे को ये सारा दिखा रहे होते हैं तो ला मुहाला, अगर वो बच्चे हैं कोई इतने सख्त तो नहीं है, उनको पता है ना कि अहम है, उनको भी अहमियत है, माँ बाप की मेहनत है, चलिए सब आप जैसे खाते पीते नहीं होंगे, कुछ सफ़ेद पोश भी तो होंगे ना, कुछ बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ लोग होंगे ना, वो भी करते हैं, वो हफ्ते में एक दिन गोश्त पकाते होंगे लेकिन बच्चों को बुक्स लेकर देते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है दीन के इल्म की तो नंबर एक मौलवी साहब मस्जिद में पढ़ाने वाले हैं, आजकल घरों में आने लगे, और भी इससे बढ़ के मुझे तो इस वक्त इतनी हैरत हुई कि अब यहाँ रहकर बच्चे नेट से पढ़ रहे हैं, नेट से बाय कह लीजिए कि गायब था पहले, अब जूम होगा, कुछ और होगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी बच्चे घरों में बैठकर नेट से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी और हमारे लिए सोच की बात क्या होगी। मैं ये कोरोना के लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, आसानियाँ देखिए हम किधर खो गए, हमारी कमाई क्या थी और हमने अपने बच्चों को दीन के नाम पे 1 घंटा तो नहीं पढ़ते होंगे, 15 से 20 मिनट, मौलवी साहब फ़ोन करें, ये जो क्लासेस ऑनलाइन होती है तो वैसे ही 15 से 20 मिनट का स्लॉट देते हैं, क्या आपका बच्चा नहीं सोचेगा कि वहाँ 40 आवर्स अ वीक और यहाँ खेच तेंच के 2 घंटे या वीक्स, और इसमें भी हमारी मर्जियाँ, अब बच्चा नहीं है, अब सो रहा है, अब नानी के गया है, अच्छा कल आइएगा। वो बेचारे साइकिल पटकते हुए जो मौलवी साहब गली गली आके पढ़ाते थे किसी दौर में, अभी भी पढ़ाते होंगे, उनकी क्या वही वैल्यू है जो किसी साइंस टीचर की है, इंग्लिश टीचर की है? आपके घर की डोर बेल हो और आप दरवाज़ा खोलें तो आगे बुरके में मलबूस एक शरीफ सीधी सादी बाहया औरत दिखे और वो तारुफ कराए कि मैं आपके बच्चे को कुरान पढ़ाने आई हूँ, तो उस औरत को अंदर बुलाने, या ये मौलवी साहब साइकिल पे हैं, दाढ़ी है, और वो कहते जी मैं आपके बच्चे का मौलवी आया हूँ, सच बताइए इन दोनों का प्रोटोकॉल क्या होगा? कहाँ बिठाते हैं हम? अमूमन घर में सपारा पढ़ाने के लिए आने वाले ख्वातीन और हजरात को हम कहाँ बिठाते हैं? मैंने तो देखा है घर के बरामदे में मौलवी साहब को बिठा दो, सख्त गर्मी है पंखा लगा दो, अंदर नहीं आने देना, पता नहीं क्या हो। और बाजी भी है कोई बेचारी, तो उसको भी किसी ऐसे मैसी कमरे में जहाँ बच्चों ने पहले ही बहुत कुछ फैलाया हुआ है, कहते हैं आइए इधर पढ़ाइए। इसके बरक्स उसी बच्चे को साइंस पढ़ाने के लिए ट्यूटर आता है और घर आके ट्यूशन पढ़ा रहा है, और सूटेड बूटेड, बहुत अच्छी बात है, साइंस पढ़ानी चाहिए। लेकिन जब डोर पे बेल हो और आप एक बड़ी मॉड स्कॉट टीचर को देखें या एक बड़े अच्छे सूटेड बूटेड सर को देखें, उनको कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम खोल दो बेटा, फिर चाय बिस्किट, हेल्प योर सेल्फ। क्या ये झूठ है कि सच है? ये आप और मैं महसूस करते हैं, हमारे बच्चे नहीं देखते? नतीजा क्या हुआ? एक सोच डेवलप हुई, और वो क्या थी कि दीन वाले दीन सीखने सिखाना और ये सब हल्का काम है, इस ओके पार्ट टाइम है, और जो सुबह का पढ़ना पढ़ाना दिन रात जाना ये फुल टाइम है, ये फ़र्ज़ है, वो सुन्नत है, बल्कि नफिल, ये नागुज़ीर है और वो हो जाए तो बेहतर है। आपने अपने बच्चे को बचपन से ही फीलिंग दे दी कि दीन गरीब है और दीन की तरफ बुलाने वाले भी मस्कीन ही हों तो अच्छे होते हैं, कोई उनके साथ हमारी खूबसूरती हो तो हम शक में पड़ जाते हैं कि ये हैं कौन से, ये कौन सा दीन सिखा रहे हैं जो इतनी खूबसूरती से सिखा रहे हैं, कोई इनको फंडिंग करता होगा, ये किसी के ज़रूर ऐसे वैसे होंगे, ये जुल्म है। आज हम मुसलमान माँ बाप, मुस्लिम पेरेंट्स इस बात को समझें, ये आवाज़ जहाँ तक चली जाए, ये इस्लामिक तरीका नहीं था, ये तो गोरे अपना तरीका निज़ाम आपको दे गए। अब इस वक्त इतना मौका भी नहीं और आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, कभी मौका हो किसी क्लासरूम में बैठे होंगे तो सुना दूंगी कि कैसे शुरू दौर में दीन की तालीम और दुनिया की तालीम इकट्ठी होती थी, एक ही जगह थी। बच्चे जब सुबह घर से निकलते थे ना, तो वो ये नहीं कहते थे आप उनको कि असरी तालीम के मजहबी तालीम, सब सीखते थे। वो केमिस्ट्री क्या सीखेंगे उस उम्र में, अगर वो इंग्लिश उर्दू और मैथ सीखते थे ना, तो साथ ही वो कुरान भी सीखते थे, हदीस भी सीखते थे। उम्र के साथ साथ फिर उनको उसके अंदर फैक्ट भी सिखाई जाती थी, उनको सीरा भी सिखाई जाती थी, ये सब कुछ होता था। ये तो बाद में टूटा जब गैर मुस्लिम दुनिया के इमाम बने ना, पहले हम इमाम थे। आप में से शायद कुछ लोगों को ये भी ना पता हो कि 1000 साल तक उम्मत मुस्लिमा इस दुनिया के माथे पे एक झूमर की तरह चमकी, हम हिदायत का सूरज थे। मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भी इस्लामिक तौर तरीके अपनाते थे, तालीम का तरीका वही था, नॉन मुस्लिम मुसलमानों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को भेजते थे। क्यों? कहते थे कि ये हमें पता है कि यहाँ से जो पढ़ के आता है बच्चा, वो बड़ा वेल मैनर्ड होता है, बड़ा बाअदब होता है, ये माँ बाप के आगे बदतमीजी नहीं करता, कुछ नहीं करता। और अगर आप वो खित्ता जिसको आज यूरोप कहते हैं, क्या उसकी कोई मुश्तरक तारीख है, कोई कॉमन थिंग थी? क्या इसमें शामिल ममालिक के इकदार, रिवायात, निज़ाम हुकूमत, सियासत, अखलाकियात एक जैसी थी? हकीकत यह है कि एक इलाके का हीरो दूसरे का दुश्मन था और दूसरे का फातह पहले इलाके के लिए नाकाबिले नफरत था। नाम ले लीजिए हिटलर का, आप हिटलर को क्या कहते हैं और जर्मनी वाले क्या कहते हैं और यूरोप वाले क्या कहते हैं सब जानते हैं। नतीजा क्या हुआ कि अदब हो कि फ़न हो कि आर्ट हो कि सकाफत हो, हर इलाके ने अपने अपने अजीम लोगों को जन्म दिया। फ्रांस का एक अदीब ऐसी ज़ुबान में अदब तख्लीक करता था जो बाकी यूरोप के लिए अजनबी थी, और रूम का मुसव्विर ऐसे शाही तरीके से माहौल को कैनवस में ढालता था کہ یورپ والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور صدیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یورپ کو آج ایک تہذیب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اندر سے دشمن تھے، الگ تھے، ہر ایک کا اپنا سٹائل، زبان نہیں ملتی۔ آپ یورپ میں جائیے، آپ کو 7 زبانیں چاہیے، صرف 2 گھنٹہ کیا، کبھی کبھی تو 1 گھنٹے کی فلائٹ سے اتریں گے تو زبان بدلی ہے۔ ناروے میں آپ نارویجین بولیں گے، فرانس میں اتریں گے آپ کو فرینچ سمجھ آئے گی، آئرلینڈ میں جائیے آپ کو آئرش بولنی پڑے گی، ایون انگلش بولنے والے۔ آپ یورپ میں، یو کے میں جائیے تو اور ایکسنٹ ہے، ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں جائیے تو ان کا اسٹائل فرق ہے، لنڈن والوں کی لینگویج اور ہے، اور مینچسٹر جو 4 گھنٹے پہ، ان کا ایکسنٹ فرق ہے۔ اتنے فرق تھے، اتنا کچھ مختلف تھا، آج سب کا کلچر ایک ہی ہو گیا۔ آج ایک ہی انداز کا چاکلیٹ پوری دنیا میں معروف ہے، ایک ہی کمپنی ہے، بلکہ ہر ملک میں الگ سے الگ بنتا ہے۔ یاد رکھیے، طریقہ تعلیم، تدریس ہی کلچر کو جنم دیتا ہے۔ آپ آج جا کر وہ کتابیں تو کھول کر دیکھیے جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں غیر ملکوں میں بیٹھ کر اپنے سکولوں میں، اینٹی اسلام بکس ہیں۔ کسی نے مذہب کو نکال دیا تو انہوں نے کرسچینٹی کے بھی خلاف باتیں کتابوں میں پڑھا دی۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ناروے میں ہوتے ہیں، تو ناروے میں رہتے ہوئے جب آپ کو طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو آپ کو وہاں کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے نا، تو انہوں نے آپ کے لیے نارویجین کورس مسٹ کیا، آپ کو نارویجین لینگویج سیکھنی ہے تب ہم آپ کو یہاں رہنے دیں گے۔ میں نے بھی وہ کورس کیا، جا کے نہیں کیا، آن لائن کیا۔ میں اس کے بعد کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ یہ ہے وہ خوبصورت گیٹ وے کہ جس کے رستے وہ آپ کو اپنا A to Z کلچر پڑھا دیتے ہیں۔ میں نے پڑھا، میں پڑھنا کیا تھا، یعنی میں جب دیکھتی تھی تو میں سوچ رہی تھی، آپ سمجھ آئیے کہ نارویجین لینگویج لازمی کیوں ہے کسی کو ویزا دینے کے لیے؟ کسی کو آپ کا پاسپورٹ دینا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ہماری زبان سیکھو۔ انہوں نے اپنی زبانیں ایسے زندہ کی ہوئی ہیں، وجہ کہ وہ آپ کو اس میں پورا نائٹ کلب کا ماحول ایک چیپٹر میں پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو جا کر ان سے گانے سننے جاتے ہیں، میوزک سیکھنے جاتے ہیں، انہوں نے میوزک آپ کو جا کے لینگویج کے بہانے سکھا دیا۔ اسی طرح اپنے ملک کا پورا سوشل سسٹم، سیاسی نظام، سارا کچھ سکھا دیتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئیں تو آپ کو یہ بتاؤ کہ آپ کو شراب لینی ہے تو کہاں کہاں سے لینی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری ہومو سیکشوالٹی آپ کو اس نارویجین کورس میں ازبر کرا دی۔ میں سوچتی تھی کہ میں تو ایک اچھی خاصی عمر کی خاتون اگر ہوں، اور اگر مجھے اپنی عمر کے اس حصے میں یہ باتیں پتہ چلی ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے کیا ٹھیک ہے۔ تو جب بچے چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں یہ پڑھتے ہیں، آج آپ کے وہ بچے جو غیر مسلم ملکوں میں، جہاں آپ کیا کیا نام ہے میں کیا لوں، آپ تو ابھی ان ناموں کو نہ ہی سنیں تو اچھا، کیونکہ ادھر بیٹھی ہوں تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کے 3 سال سے کم و بیش کے بچے کو وہ قوم لوطیت سکھاتے ہیں، لواطت، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں کارٹون اور جو ڈرائنگز آج کل بنتی ہیں وہ قوم لوطیت کی بنتی ہیں، ان کی دیواروں پہ جو بورڈز میں وہ بچوں کے بنا کے لگاتے ہیں وہ قوم لوطیت کے ہیں۔ اور کیا کہوں میں آپ سے، وہ بچہ قرآن جب کل پڑھے گا وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں کہ ایک قوم تباہ کر دے گی اس بات پہ۔ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کر دی یورپ نے اور باقی ملکوں نے بھی۔ یہ جو آپ بلو بچے کا کپڑا اور پنک کپڑا، یہ اب ہم بیکورڈ مسلمان ملکوں میں یا پاکستان انڈیا میں ابھی چلے گا، ہائے ہائے لڑکے کو گلابی کپڑے پہنا دیے اور لڑکی کو بلو پہنا دیے، یہ باہر ختم ہو گیا، بیلونز کا تصور ختم۔ لڑکی لڑکا، لڑکی لڑکا بٹھاتے تھے کبھی آج سے پچھلی صدی میں تاکہ کپل بنتے جائیں بڑے ہو کے، اب انہوں نے 2 لڑکیاں 2 لڑکے، 2 لڑکیاں 2 لڑکیاں۔ آپ کے بچوں کی کتابوں میں 2 ماما 2 پاپا، 2 مام 2 فادر، یہ 2 مام، یہ 4 کی فیملی ہے، ایک مام مام فیملی، ایک پاپا پاپا فیملی، اور ایک بیکورڈ سی فیملی جس میں ایک مام ہوتا ہے، ایک پاپا ہوتا ہے اور پھر بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو بیکورڈ دکھاتے ہیں۔ یہ اس نسل کا زہر ہے اس وقت، جو آپ کہہ لیجئے کہ 2022 میں آج ہم داخل ہو گئے ہیں نا، نظام تعلیم کے ذریعے زہر بھرا گیا نسلوں میں، اور ہم مسلمان کڈنیپڈ ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یہ کام کریں، آپ کے اپنے ملکوں میں یہ کچھ ہونے لگا۔ تو تعلیم کو جب دین سے الگ کیا، تو جو کسی نے کہا نا کہ جدا ہو دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ تو انہوں نے سیاست کے لیے کہا تھا نا۔ میں آج کے اپنے اس موضوع کو اگر ریپ اپ کر دوں، باتیں تو بہت ہیں، اتنی باتیں کہ اس پہ پورا کورس ہونا چاہیے، لیکن آج غیر فطری طریقہ تعلیم ہے۔ آج ہمارے بچے 3 سال سے شروع کر کے 25 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا خوفی، تقوی، خشیت، اللہ کا پیار، نبی سے محبت کوئی ضروری نہیں آئے، کیونکہ وہ تو ایک ٹوٹکا سا لگا دیا ساتھ دین کا۔ آپ کا ایک بچہ 15 साल की बात करें, मैं मैट्रिक से ऊपर नहीं ले जाती आपको, मैट्रिक एफ ए पे रहिए, क्या उसको कुरान समझ आता है? क्या आपके उस बच्चे के दिल दिमाग में ये तसव्वुर है कि इक़रा बिस्मी रब्बी का क्या मतलब है? देखिए, पहली वही से दूर नहीं जा सकते हम। हम सोचते हैं शायद अल्लाह ने पहली वही में ये कहा था कि इक़रा पढ़ो, बिस्मी रब्बी का अपने रब के साथ, अल्लज़ी खलक जिसने पैदा किया, इसे मुराद है इनको कुरान पढ़ाओ, इनको हाफिज़ बनाओ। हमारे यहाँ फिर एक दूसरा ड्रॉबैक भी ले लीजिए, क्योंकि आज सिर्फ हिंट्स ही चल सकते हैं हमारे पास। बस एक तो नैरो करते हुए पिक्चर आपने जो देखी वो असरी तालीम से जो नतायज निकल रहे हैं वो ये है। दूसरी तरफ आप दीन बच्चे को सिखाने जाते हैं, पोलराइजेशन हो गई आज सोसाइटी की। जैसे नॉर्थ साउथ पोल है ना, वो कभी नहीं मिलते, रिपेल करते हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। आज हमारे माशरे में दो धारी तालीम है, एक वो जिसका एक बड़ा ही भयानक सा नक्शा थोड़ा सा देखा है, अभी पूरा नहीं देखा, दूसरी तरफ कह ना जीना हमने तो अपने बच्चों को दीन सिखाना है। अब बच्चे दीन सीखेंगे वो कैसे? 3 साल के बच्चे को एक मदरसे में आप डालते हैं, फिर वो वहाँ उसको सिखाते हैं जो भी तालीम दीन के रिचुअल्स के साथ, कुरान सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वो बच्चा किसी उससे ऊपर के दर्जे के मदरसे में जाता है, फिर उसको वहाँ 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वफाकुल मदारस कह लीजिए या आप आलिम का कोर्स, दरस निज़ामी है ना नाम। अब जब वो बच्चे वो पढ़ते हैं सिर्फ, अब वो बच्चे जिन्होंने अरबिक और उर्दू ये 2 सब्जेक्ट पढ़े, और आप कहते हैं ये मजहबी तालीम ले रहे हैं, मैं माजरत के साथ अपने साथ भी और हर दीनी मदरसे से भी जहाँ सिर्फ ये सिस्टम है। अब हुआ क्या, 15 साल की उम्र तक वो बच्चा भी तैयार हुआ, कहाँ पहुँचा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, तजवीद कुरान की बहुत अच्छी है, कुछ हिस्सा कुरान का हिफ्स भी हो गया, कोई तो पूरा भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वाकई स्पिरिचुअल लेवल पे तज़किए के साथ तालीम दी बच्चे को, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोज़ा बेहतरीन तरीके से हो गया। इसके मैं 2 डायमेंशन इससे आगे कर सकती हूँ। एक ये है कि आपने वाकई सिर्फ दीन सिखाया और एक्सीलेंट सिखाया, तज़किए वाला, फ़िरका वारियत वाला दीन नहीं, अपने झंडे गाड़ने वाला दीन नहीं, मसलकों में और फिरकों में बांटने और कुंद छुरियां बनने वाला दीन नहीं। वो किसी ने कहा ना कि आज हमारा तो सिस्टम ये है कि ये मोर्चे हैं, जो बंदा जिस मसलक के मदरसे में दाखिल कर दिया जाता है वो वहाँ से उसी मसलक का पैगंबर बन के निकाला जाता है, उसको सारे दूसरे मुसलमान फिरके काफिर लगते हैं, जहन्नमी लगते हैं, बिदती लगते हैं और सो ऑन। यानी घोल के जो मोहब्बत पिलाई जाती है वो मसलक की मोहब्बत, जमात की मोहब्बत, जो नाम होता है ना हमारा दीन का वो मोहब्बत। मसलन नाम मारूफ है आपको भी, कोई वहाँ से तबलीगी कहता है खुद को, कोई खुद को वहाँ से अहले सुन्नत कहता हुआ निकलता है, कोई बरेलवी कहता हुआ निकलता है, कोई देवबंदी कहता हुआ निकलता है, इसी तरह और भी नाम है। इस्लाम का लफ्ज़ तो बहुत पीछे रह जाता है, और उसको ये यकीन होता है कि इस फिरके से बाहर वाले जन्नत से बाहर हैं, चलिए मान लेते हैं। ये तो एक बड़ा ही नासूर है, जितनी नफरत आज दीन के नाम पे दीनदारों की दूसरों से फैल रही है, इतनी नफरत दुनियादार एक स्कूल दूसरे स्कूल से नहीं फैला रहा इल्ला माशाल्लाह। लेकिन इसका दूसरा एंगल देखिए, अगर मैं मान लेती हूँ पूरा तज़किया तरबिया मसलकों से पाक, सिबगतल्लाहि व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, इस रंग में रंगा हुआ एक बच्चा और बच्ची मदरसे से फारिग होते हैं, 15 साल की उम्र की बच्ची की बात कर लें और बच्चे की, एक लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं बोल सकते, गिनती उनको नहीं आती, वो किसी 4 पढ़े लिखे लोगों में चले जाएं उनकी ज़ुबान गुंग हो जाती है। एक बच्ची बहुत अच्छा दीन सीख के आई, किरत भी बड़ी प्यारी और सब कुछ, आप उस बच्ची को इन्वाइट कीजिए कि ये शहर है, मसलन ये लाहौर का कोई इलाका ले लीजिए और लिबर्टी का इलाका है, वहाँ कोई MP MNA है और बहुत दीन का शौक़ है उनको, आप बेटा आइए और उधर दर्स दीजिए। आप यकीन करें उस बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो उस माहौल को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, ज़ुबान लड़खड़ाएगी। हज़रत मूसा को अल्लाह ने फिरौन के महल में इतने साल क्यों रखा था? ताकि वहाँ के शाही आदाब सीख जाए, और आना जाना लगा होगा। कल जब मूसा को मदियन से वापसी पे फिरौन के सामने खड़ा होने का हुक्म दिया जाएगा ना, फ़ज़ख़बाइला फिरौन इन्नहु तगा, तो मूसा को कोई बैरियर ना लगे, कोई उनकी इंटेंसिटी या उनकी कोई कह लीजिए कि आप कह सकते हैं कि वेवलेंथ मिलती हो, क्योंकि जहां बंदा उठता है बैठता है वहां कंफर्टेबल होता है। जब आपका इतना कीमती बच्चा और इतनी कीमती बच्ची दीन सीख कर आई, जो दुनिया का इमाम बनाने वाला दीन था, लेकिन उसमें असरी तालीम नहीं थी, तो वो कामयाब नहीं होगी। वो कामयाब होगी अपने ही उस मदरसा सिस्टम में, वो वहाँ दर्स भी दे लेंगी, वहाँ पढ़ा भी लेंगी, एक मखसूस तरीके को टैकल भी करेंगी, लेकिन वो दुनिया की इस दौड़ में नहीं चल पाएंगी। देखिए कहते हैं ना कि नॉलेज स्पीक्स, इल्म बोलता है। जिन्होंने खुद नहीं बोला, जिनको मैथ नहीं आया, वो कैसे 2+2 करेंगे? तो क्या पता चला कि एक दूसरी शख्सियत डिवेलप हो गई।